धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, लोया लोयपयासं, गोदमथेरं पुनोजिनं वीरं, नम्यूणखेत्तसुत्तं, जहोवये संपयासेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो प्रथम खंड है जीवस्थान नामक, और अपना विषय भी चल रहा है क्षेत्रानुगम। चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 46 पर हम गए, 46। एक क्षेत्र की बात हम देख रहे हैं, किसी भी गुणस्थान में या मार्गणा में एक क्षेत्र निकालना है तो उस जीव की अवगाहना, एक जीव की मल्टीप्लाइड बाय उसकी संख्या, तो हमें टोटल अवगाहना मिल जाती है। तो उसमें स्वस्थान, स्वस्थान विहार व स्वस्थान, फिर सभी समुद्घात उपपात आदि बात हम लोग को सोचना है। तो हमने सासाधन में यानी तीसरे चौथे दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान की भी बात देखी, पांचवे की भी बात देखी। अब यहाँ देखो, थोड़ा पीछे से देखते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त की बात चल रही थी, आहार की अपेक्षा बात की थी उन्होंने 45 पेज पर। देखो 45 पेज पर नीचे से पांचवी लाइन, आहारक शरीर का उच्छेद एक रत्नी प्रमाण है, और उच्छेद के दसवें भाग प्रमाण विष्कंभ है, जैसे देवों के शरीरों में देखा था वैसा ही। और विहार में संख्यात घनांगुल क्षेत्र हो जाता है,
रत्नी प्रमाण यानी एक हाथ,
रत्नी का अर्थ होता है हाथ, एक हाथ प्रमाण। अब उसकी बात अभी यहाँ पर 40 पेज पर आना, सेकंड लाइन में क्या बताया, देखो ये सब क्षेत्र सामान्य आदि चार लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि जो हम देख रहे प्रमत्ता आदि जो है सारे मनुष्य ही है, मनुष्य लोक में हो गए, और कहते कि अन्य चार लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण हो गए। हाँ, अब मानुष क्षेत्र के संख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं,
वो विहार स्वस्थान में कौन से इसमें?
नहीं नहीं, आहारक समुदात में लेना,
आहारक
प्रमत्त गुणस्थान वर्ती आहारक समुदात करते तब लेना। अब मारणांतिक समुदात का क्षेत्र लाने के लिए, मारणांतिक यानी मुंडराज मारणांतिक जहाँ करेंगे उसको क्षेत्र लाने के लिए, जिस अभीष्ट, अभीष्ट यानी हम जो चाहते हैं इच्छित संयत राशि का क्षेत्र लाना हो, अभिष्ट संयत राशि यानी छठे गुणस्थान के सातवें के कितने हैं, तो उनकी जो संख्या निश्चित है उनके अवगाहना को उनकी अपनी अपनी संख्या से गुणित करेंगे तो उनका क्षेत्र मिलेगा।
आहारक समुद्घात में मारणांतिक की बात कर रहे हैं,
आहारक में मारणांतिक नहीं, संयतों में मारणांतिक। आहार के काल में मरण है ना, आउट ऑफ रेंज आ रहा है।
हेलो, हाँ बोल। हेलो हेलो, आवाज येत नहीं है?
नहीं नहीं, वो देना, शोभा है ना।
हेलो, हाँ चालू कर तिकडे दुसऱ्या याच्यावर। दूसरा आवाज बिल्कुल एक नहीं है।
हाँ देखो ये यहाँ बात किसकी चल रही है, मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए, यानी भी संयतों में मारणांतिक समुद्घात लाना है। जिस अभीष्ट संयत राशि का क्षेत्र लाना हो, अभीष्ट संयत राशि, संयत राशि तो चौथे गुणस्थान से लेकर चौदहवें तक सारे संयत है, तो जिसका निकालना है उसे संख्यात प्रतरांगुलों से गुणा करके। संख्यात प्रतरांगुल क्यों, उनके अवगाहना हो जाए। हाँ, जो लब्ध आवे उसे सात राजयोगों से गुणित करना चाहिए। इस कारण ये मैक्सिमम उन्होंने लंबाई ली। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए संयत जीव मानुष लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते। ये उन्होंने कैसे निकाला, मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणा मारणांतिक में, सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं ना, इसलिए उसकी अपेक्षा से बात की। विशेषार्थ, यहाँ प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवों का मारणांतिक समुद्घात संबंधी क्षेत्र के लाने के लिए अभीष्ट राशि को, अभिष्ट राशि ने उनकी अपनी अपनी जो राशि चठे की हो या जो कुछ है,
अपना अलग लेना।
यहाँ तो केवल प्रमत्त संयत की बात कर रहे थे। प्रमत्त की अपनी राशि, ये पेज नंबर हम 46 पर है।
फोन बोल।
हाँ
आउट ऑफ रेंज,
वो उसमें आउट ऑफ रेंज और सर्चिंग आ रहा है।
हेलो,
उनके फोन में आउट ऑफ रेंज और सर्चिंग आ रहा है। अभी यही चालू रखती हूँ मैं, इसके सामने रखती हूँ स्पीकर के। 81 ये जो चालू है वही
स्पीकर चालू कर। खाली तो ना फिलहाल
मैं ये नीचे रखती हूँ। तो फिर से दोबारा लगाएंगे शायद, ये स्पीकर मैं नीचे रखती हूँ, इसके सामने रखना। टेबल में किधर जगह, अभी आएगी ना फोन आएगा उनका। हाँ
मानुष लोग के असंख्यात तो क्षेत्र में रहते हैं।
हाँ देखो देखो ये बात किसकी चल रही थी, प्रमत्तों की, मारणांतिक की बात निकालने की, उसकी बात अभी यहाँ देखो।
नहीं
नहीं अभी अभी केवल छह की बात करना, उनकी अपनी राशि। इसका अभिप्राय यह है कि संयत जीव, अभी संयत कहने से सभी संयत लिए, सौधर्म कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि तक जाने वाले मुनिराज ही होते हैं, और इसीलिए वे वहां तक मारणांतिक समुदाय भी कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि मध्य लोक से लगाकर कुछ कम सात राजू ऊंची है, यानी उसकी कितने ऊंचाई पर है, कुछ कम सात राजू, तथा एक संयत की उत्कृष्ट अवगाहना भी, यानी उसकी उत्कृष्ट अवगाहना का क्षेत्रफल, उत्कृष्ट अवगाहना तो उसका हमने क्षेत्रफल जो काउंट किया है, यानी उनकी जो हाइट होगी एवरेज जो निकालेंगे और उसका हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण ही होती है, यानी एक संयत की उत्कृष्ट अवगाहना। उत्कृष्ट अवगाहना जो, यानी हमने एक संयत की उत्कृष्ट अवगाहना का उत्कृष्ट क्षेत्रफल देखा था।
अब आप इसी पे सुनना, अभी डिस्कनेक्ट मत करना।
हाँ देखिए पेज नंबर है 46 और यहाँ हम प्रमत्त संयतों की मारणांतिक की अपेक्षा क्षेत्र यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे करना, यहाँ देखो विशेषार्थ में जो ले रहे थे वो विशेषार्थ पढ़ते हैं, यहाँ प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवों का मारणांतिक समुदाय संबंधी क्षेत्र के लाने के लिए अभिष्ट राशि को,
हेलो
अभिष्ट राशि यानी संयतों की जो राशि उसको
माइक च्या जवळ ठेवले
संख्यात प्रतरांगुल से गुणित कर
पेज नंबर 46 ठेवतो परत माइक च्या शेजारी जे स्पीकर च्या शेजारी बोल
हाँ यहाँ करना है जो उनकी राशि है उसको संख्यात प्रतरांगुल से गुणा करना, क्यों, एक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना उसका क्षेत्रफल निकालना है तो एक जीव की अपेक्षा उसका उत्कृष्ट क्षेत्रफल होता है संख्यात प्रतरांगुल। 525 धनुष वाले ले सकते हैं ना उत्कृष्ट में, पुनः सात राज्यों से गुणा करना क्योंकि कुछ कम सात राज्य प्रमाण सर्वासिद्धि तक वो मारणांतिक करेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि संयत जीव स्वधर्म कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत उत्पन्न होते हैं और इसीलिए वे वहां तक मारणांतिक समुदाय भी कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमको निकालनी है। सर्वार सिद्धि मध्य लोक से लगाकर कुछ कम सात राज्य ऊंची है तथा एक संयत की उत्कृष्ट अवगाहना भी, उत्कृष्ट अवगाहना भी का अर्थ क्या कहते हैं उसको, अर्थ क्या है उसका देखो, उत्कृष्ट अवगाहना का उत्कृष्ट क्षेत्रफल, क्योंकि उतने क्षेत्रफल सहित पूरे मारणांतिक सात राज्यों तक करेंगे उत्कृष्ट अवगाहना 525 ली, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है हमने देखा मनुष्यों में उसके 90वें भाग प्रमाण तो उसका विष्कम्भ होता, तो विष्कम्भ से परिधि निकालेंगे, परिधि को विष्कम्भ के चौथे भाग से गुणा करेंगे तो हमें उसका गोलाकार का क्षेत्रफल मिलेगा। और वैसे उसको हाइट से गुणा करेंगे तो उसका पूरा घनफल मिलेगा, हाइट की जरूरत नहीं, हाँ संख्यात प्रतरांगुल हो जाते हैं क्योंकि हाइट वाइज तो वो ऊपर तक मारणांतिक ही करेंगे, हाइट वाइज उसको नहीं गुणा करना, घनफल निकालने के लिए मारणांतिक का जो जहां तक मारणांतिक करते हैं सात राज्य कुछ कम उससे गुणा करना, ये संख्यात प्रतरांगुल इंटू सात राज्य। अतः उत्कृष्ट मारणांतिक समुदाय की अपेक्षा सात राज्यों से संख्यात प्रतरांगुलों के गुणित करने का विधान किया गया है, एक संयत की उत्कृष्ट अवगाहना के प्रतरांगुल इस प्रकार आते, वो करके दिखाए कैसे निकालते हैं संख्या प्रतरांगुल। तो उन्होंने 500 धनुष लिया, उत्सेत 500 धनुष, क्योंकि वो 525 भरत और ऐरावत की अपेक्षा है, पर जनरली विदेह क्षेत्र में तो उन्होंने 500 धनुष की अवगाहना बताई वहां सब संयतों की। विष्कम्भ कितना होगा, मनुष्यों में तो 9वां भाग प्रमाण होता है, देवों में 10वें भाग प्रमाण देखा था, नारकियों में 8वें भाग प्रमाण होता है, तो यहाँ 9वें भाग प्रमाण यानी 500 का 9वां भाग, इतने धनुष तो उनका विष्कम्भ होगा। परिधि कैसा निकालना, यानी जो हमने एक सूक्ष्म परिधि निकालने के लिए विष्कम्भ को 16 से गुणा किया, उसको पूरे ब्रैकेट में डाल लो ऊपर से नीचे तक, 500 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16, इसको एक ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट के बाहर प्लस 16,
हाँ
नहीं नहीं जीव राशि नहीं, ऐसा ही है वो गणित का ही तरीका है, उनका फॉर्मूला है, ये पूरे को डिवाइडेड बाय 113 है, ये तो परिधि निकली, उसको 500 डिवाइडेड बाय 9 विष्कम्भ से गुणा किया इंटू 3 किया, ये फॉर्मूला ही उनका पहले बताया था उन्होंने, परिधि परिधि निकली पूरी। तो ये 177,644 बटे 1017 धनुष, ये धनुषों में आया। अब क्षेत्रफल निकालना, ये पूरी परिधि निकली, यानी जो परिधि लिखा ना बाजू में परिधि लिख के आगे पूरा फॉर्मूला बताया, ये सूक्ष्म परिधि निकली। अब उसमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो परिधि, परिधि मल्टीप्लाइड बाय विष्कम्भ का चौथा हिस्सा। तो परिधि लिखी 177,644 और डिवाइडेड बाय 1017। अभी इसको गुणा किया ब्रैकेट में, 500 डिवाइडेड बाय 9 ये क्या है, विष्कम्भ है, और उसका चौथा भाग। परिधि मल्टीप्लाइड बाय विष्कम्भ का चौथा भाग इज इक्वल टू गोल क्षेत्र का, गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है, ये क्षेत्रफल मिलेगा। इसके आगे जो फिगर है उसमें करेक्शन है, देखो वहाँ क्या लिखा है उसको पहले पढ़ती हूँ मैं। 8881200 लिखा है, उसके बदले 8882 लिखना, 12 के बदले 22 और 000। और उसके नीचे ये सब नीचे के सर्व का गुणकार होता है, 36612। ये केवल धनुष नहीं है, अभी ये वर्ग धनुष है, धनुष वर्ग, स्क्वायर धनुष। क्षेत्रफल किसमें आता है, जैसे हमारा घर कितना बड़ा है, आप कहेंगे 2000 स्क्वायर फुट, तो 2000 फुट कहेंगे स्क्वायर फुट, वैसे ये स्क्वायर धनुष होना चाहिए, जिसको हम वर्ग धनुष कहेंगे, जैसे हम प्रतर कहते ना। यानी जो यूनिट धनुष लिखा है उसके बदले वर्ग धनुष या प्रतर धनुष लिखना चाहिए। अब उसके नीचे का, उसको उन्होंने और नीचे लेते हैं, उसके धनुषों के प्रतरांगुल करने हैं, तो धनुष के प्रतरांगुल करने हैं ना, ये वर्ग धनुष के वर्ग प्रतरांगुल करें, इन्हें प्रतरांगुल का अर्थ होता है वर्ग अंगुल। एक धनुष में कितने अंगुल होते हैं, 24 अंगुलों का एक हाथ और 4 हाथ का एक धनुष, 24 चौक 96। चार हाथ का एक धनुष और 24 अंगुलों का एक हाथ, 24×4 96 अंगुलों का एक धनुष, यानी एक धनुष में 96 अंगुल होते हैं। हमारे पास धनुष नहीं है, वर्ग धनुष है। कितने वर्ग धनुष, जो अभी हमने निकाली संख्या, तो उसके अंगुल करने के लिए 96 के वर्ग के गुना करना पड़ेगा। ख्याल में आती बात, देखो नीचे की लाइन में ये धनुषों के हमको प्रतरांग, इन वर्ग धनुषों के, जिसको हम कहेंगे प्रतर धनुषों के प्रतर अंगुल करने हैं। तो नीचे के लाइन में भी वो 88 जो है ना, वो करेक्शन करना, 8882200 चाहिए 12 के बदले, 36612 डिवीजन में इसको 96 के वर्ग को वर्ग से गुणा करना है। 96 को ब्रैकेट करके उसको वर्ग किया है कि उसमें 96 को ब्रैकेट करो और उसको वर्ग करो, हमने करेक्शन किया हुआ है लास्ट टाइम, क्योंकि 96 के वर्ग से गुणा करना पड़ेगा। तो जो संख्या आएगी प्रतरांगुलों में वो भी फिगर बराबर नहीं है, वो 852595 वगैरह वगैरह लिखे ना, उसके बदले नई लिखो संख्या बाजू में। वो होगी 818583, फिर से 818583552003030। यहाँ लास्ट में जीरो काट के फिर ब्राइट ऐसे फोन कर दिया, हाँ क्योंकि 30 यहाँ पर भी है ही ना, 30 तो रहेगा ही। इसको कहेंगे संख्यात प्रतरा, ये संख्यात की इतनी वैल्यू हो जाएगी। देखो देखो, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट हो गए। हाँ नीचे का बराबर है। देखो ऊपर की फिगर क्या थी, 888, हाँ 888, 888 22 30, हाँ इंटू दो बार 96 करना है ना, गया फिर 888 22 30 इंटू 96, फिर इंटू 96, एट वन, हाँ 30 शिवलाइस में 8185835520000 डिवाइडेड बाय 36612, हाँ नहीं ये नहीं निकाला मैंने, नहीं ये तो मेरे में 30 के 20 उसमें ऐसी लाइन आ गई थी इसलिए वो कंफर्म किया। देखो सर्व संयत राशि का प्रमाण, एक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना वाले का इन्होंने क्षेत्रफल निकाला है, घनफल नहीं निकाला क्षेत्रफल निकाला, विषकंभ से परिधि और परिधि से वो एक फोर्थ, वन फोर्थ ऑफ विषकंभ से गुणा करके उनकी जो बॉडी है उसका राउंड का क्षेत्रफल निकाला। अभी जहां तक मारणांतिक करते हैं क्योंकि वो तो हाइट तो ऐसे ही मारणांतिक में गिनाई जाएगी तो सात राज्यों में वहां तक गिनना है, इंटू सात राज्यों कुछ कम, वही तो इसीलिए सात राज्यों से गुणा किया। ऐसे ऐसा जाएगा ना ऊपर, ऐसा जाएगा तो देखो अभी हमने क्या किया, अभी मान लेते हैं ना कि ये उनकी अवगाहना है, इसका क्षेत्रफल निकाला, अभी ये कहाँ तक ऊपर तक जा रहे हैं तो इससे, क्योंकि यहाँ तो हाइट से गुणा करने का कोई मतलब नहीं था, हाइट वाइज ही ऊपर चले जाएंगे ना वो, ये कह रहे पद्मासन वाले के ज्यादा हो जाएगा। अच्छा इसीलिए वो तिगुना किया है वहां पर, ये तीन गुना किया है ना वो पद्मासन की अपेक्षा ही होगी। हम देखते हैं ना केवली समुदाय में भी दंडाकार में 12 अंगुल या 36 अंगुल लेते हैं, इसीलिए उस हिसाब से उन्होंने तीन गुना किया होगा।
तो उसका हाइट कम हो जाती है,
हाइट का लेना देना ही नहीं है, हाइट तो जितनी है अभी यानी वो खड़े है या बैठे है, मारणांतिक तो ऊपर तक करना है उनको, ख्याल में आई बात, तीन से क्यों गुना किया था यहाँ, क्योंकि वो पद्मासनस्थ वाले की एरिया बड़ी हो जाती है इसलिए। किसका पता ऊपर गए कि नहीं गए, हाँ नहीं यहाँ आहार की बात नहीं, यहाँ तो हो सकता है परंतु यहाँ उसकी मुख्यता नहीं लेना है, हाँ यहाँ प्रमोत्तम की बात ली है, केवल प्रमोत्तम की। अब देखो सर्व संयत राशि का प्रमाण, ये सभी पूरी संयत राशि इकट्ठी ली उन्होंने, 3 कम 9 करोड़ बताए ना, इसमें से प्रमत्तादि गुणस्थानों की यथा योग्य राशि के, यानी प्रमत्तादि गुणस्थान यानी एक एक गुणस्थान की बात अलग अलग ली, टोटल संयतों की राशि बताई, हमें प्रमत्तों में मारणांतिक समुदाय की अपेक्षा एरिया निकालनी है, अप्रमत्त में निकालनी, अपूर्वकरण में निकालनी, अलग अलग तो अपनी अपनी संख्या गिननी पड़ेगी। तो कहते यथा योग्य राशि के जो उनकी अपनी अपनी संख्या, जैसे प्रमत्त में जो है 5 करोड़ समथिंग, अप्रमत्त में 2 करोड़ कुछ लाख ऐसा, तो उसमें संख्यात वे भाग प्रमाण राशि ही मारणांतिक समुद्घात करती है, क्योंकि जो मरण के सम्मुख है वही मारणांतिक करेंगे, और पूरे करोड़ पूर्व की आयु है तो कुछ कम करोड़ पूर्व तक तो उनका तो प्रमत्तपना बना है, वे कहाँ मारणांतिक कर रहे, अतएव उसमें पूर्व में निकाले गए एक अवगाहना के प्रतरांगुलों से गुणित करने पर, एक अवगाहना का प्रतरांगुल निकाले ना, विषकंभ की अपेक्षा उन्होंने हमने निकाले थी एरिया करने पर भी संख्यात प्रतरांगुल ही होते हैं। यानी ये तो 5 करोड़ समथिंग संख्या बताई, उसमें से कितने गिने चुने मारणांतिक करेंगे एट ए टाइम करने वाले हैं, तो उसमें यानी वो तो हम हजारों भी लेंगे तो भी वो संख्यात ही होगा। इस प्रकार मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त समस्त संयतों का क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुल गुणित 7 राजू होता है। ये ख्याल में आए कैसे कैलकुलेट किया? एक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना में विषकंभ की अपेक्षा परिधि निकालकर उसको विषकंभ के चौथे भाग से गुणा किया तो गोलाकार क्षेत्रफल आया, और उसको 7 राजू से गुणा किया, और गोलाकार क्षेत्रफल को पहले हमने नंबर ऑफ जीवों की संख्या से उसको मारणांतिक करने वाले जीवों की संख्या से गुणा किया। मारणांतिक करने वाले तो थोड़े हो गए, संयत राशि तो बड़ी है जो प्रमत्त की हो अप्रमत्त की हो। जबकि तिर्यक लोक 1 लाख योजन के 7वें भाग प्रमाण मोटे जगत प्रतर प्रमाण है, ये प्रतरांगुल की बात है और वो जगत प्रतर प्रमाण है। अतः उक्त मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र चारों लोगों के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। समझ में आई बात? ये तिर्यक लोक का भी असंख्यातवा भाग क्यों लिया? तिर्यक लोक कितना है हमने देखा था, आपको याद होगा, 1 लाख का 7वां भाग किया और 1 राजू गुणा 7 राजू के बदले 7 राजू गुणा 7 राजू किया, यानी वो जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय क्षेत्रफल और उसकी मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख का 7वां भाग उसका क्षेत्र हुआ। और यहाँ हमने कितने संख्यात प्रतरांगुल इंटू 7 राजू, यानी उसका असंख्यात भाग मिला। काल में आई ना बात? तथा मनुष्य लोक 45 लाख योजन, ये योजन यूनिट डालो वहां पर, लाख चौड़ा नहीं, मनुष्य लोक 45 लाख योजन चौड़ा और 1 लाख योजन ही ऊंचा है। अभी मनुष्य लोकों में तो लाख का यानी स्क्वायर लाख में आएगा ना, 45 लाख × 1 लाख यानी 45 लाख स्क्वायर हो गए, स्क्वायर योजन 45 लाख स्क्वायर योजन हो गए। और ये हमने कहाँ तक प्रतरांगुल की बात की थी, वो योजनों में था और ये अंगुलों में है, और वो भी 7 राजू से गुणा करना, यानी वो असंख्यात गुणा हो गया मनुष्य क्षेत्र से, वो असंख्यात गुणा क्षेत्र नक्की हो गया, कैलकुलेट करके दिखाया ना उन्होंने। अतः संयतों का मारणांतिक क्षेत्र मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा सिद्ध होता है। हाँ, आहारक का आहारक समुद्घात करते हुए मारणांतिक हो सकता है क्या? होने में कोई हर्जा नहीं, वैसे आहारक के काल में मारणांतिक हो सकता है, यानी आहारक के साथ वैकृत समुद्घात नहीं होता, पर आहारक के साथ मारणांतिक तो हो ही सकता है। वेदना समुद्घात के काल में नहीं, मारणांतिक होता है परंतु वो संयतों में वहां लेना कि नहीं लेना? हाँ हाँ होता है, क्योंकि हम महामत्स्य के एरिया कैलकुलेट करते हैं, वहां वेदना के साथ मारणांतिक लिया था। ये 12.5 करोड़ घन योजन वाली बात, उसमें से हमने घनाकार नहीं, हमने उसको क्षेत्रफल निकाल के फिर उसको त्रिगुणा इंटू त्रिगुण 9 गुणा किया था एरिया, फिर मारणांतिक के दंड निकाले थे नीचे तक के 7वें नरक तक के। वेदना के काल में हो सकता है। अब इनको सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्या पता? इस प्रकार उक्त क्षेत्र स्वस्थान स्वस्थान, अभी हमने देखा ना, उक्त क्षेत्र स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय वैकृत आहारक और मारणांतिक समुद्घात वाले जीवों का कहा, यानी संयतों की बात चल रही है, उनका अपना अपना क्षेत्र की अपेक्षा इसके एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी विशेषता है कि तेजस समुद्घात के 9 योजन प्रमाण विष्कंभ और 12 योजन प्रमाण आयाम क्षेत्र के लिए क्षेत्र के किए हुए अंगुलों का यानी 9 × 12 ये स्क्वायर योजन हो जाएगी, उसके अंगुल करना परस्पर गुणा करके सुच्चंगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण बाहुल्य से गुणित करने पर, क्योंकि सुच्चंगुल का संख्यात्वा भाग उनकी अपना तेजस समुदात वाली उसका बाहुल्य अपना आत्मा के प्रदेशों का तेजस समुद्घात का क्षेत्र होता है, इसे इसके योग्य संख्या से गुणित करने पर संख्या से यानी एट ए टाइम करने वाले जीवों से तेजस समुद्घात के सर्व क्षेत्र का जोड़ होता है। यहाँ पर अपवर्तना पहले के समान जानने चाहिए, यानी एक जीव का क्षेत्र निकाला और वो कहाँ तक फैलते हैं उसकी बात निकाली उन्होंने, और एट ए टाइम करने वाले जीवों की संख्या से गुणा करेंगे। देखो जरा फिर से आपको बताते हैं, पेज नंबर 45 से ये बात शुरू हुई थी। ऊपर से 1, 2, 3, 4 फिफ्थ लाइन लास्ट में वहां से प्रमत्त संयतों की बात शुरू हुई थी, मिला यहाँ प्रमत्त संयत लिखा है, वहां से अयोगी केवली गुणस्थान तक ये सब संयत राशि कहलाएगी। जघन्य अवगाहना उन्होंने 3.5 हाथ बताए, 3.5 रत्न यानी 3.5 हाथ, उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष बताए, और ये जघन्य और उसके जो भरत और ऐरावत में होती विदेह में नहीं, विदेह में 500 धनुष के उच्छेद का नियम बताए। तो यहाँ तो प्रधान राशि कौन सी विदेह की, इसलिए 500 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। वहां लिखा नीचे विदेहस्थ संयत राशि का 500 धनुष की ऊंचाई के साथ अविनाभाव संबंध पाया जाता है, यानी जहां मैक्सिमम अवगाहना और उनकी तो मेजॉरिटी तो उन्हीं की है, तो 500 धनुष ही रेगुलर ले लेना। अभी वहां जो
अंगुल तो अभी तक ऐसा माना था कि विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, तो अपने यहाँ जैसा चौथा काल उतरता उतरता हाइट कम हो जाती है वैसे वहाँ का नहीं होता, इसका अर्थ हो गया।
कहाँ लिखा है वहाँ 500 धनुष लिए ना,
ये जो अविनाभाव संबंध बता रहे हैं इसका अर्थ वहाँ
हमेशा चौथा ही काल है और उसमें कोई वधघट नहीं है चौथे काल में। कब कैसे हो सकेंगे, चौथे की शुरुआत का हमारा जो है वह वहाँ हमेशा वाला है, चौथे में जो वधघट वाली बात है वो वहाँ नहीं होती।
भरत ऐरावत में,
हाँ भरत ऐरावत और म्लेच्छ खंडों में होते, भरत ऐरावत के म्लेच्छ खंडों में होती, हाँ वो हमने देखा ना, वो चक्रवर्ती जाएगा तो उसके हाइट वाली रानियां होगी ना उसे, और जो लास्ट चक्रवर्ती जाएगा तो उसके, तो भरत क्षेत्र के म्लेच्छ खंडों में केवल शरीर के अवगाहना की अपेक्षा चौथे के आदि से अंत तक जितनी वेरिएशन है उतना होगा, यानी यहाँ 6 कालों का ये चलता है ना पहले से छठे काल तक, तो वहाँ चौथे के आदि से अंत तक कितनी अवगाहना का डिफरेंस पड़ेगा वहाँ।
यानी हम ये जो कथन करते हैं या कर रहे थे कि विदेह क्षेत्र में चौथा काल ही हमेशा रहता है, वो तो काल की अपेक्षा से कहा गया, लेकिन बाकी जो हाइट वगैरह जो कोई है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी,
वो तब्दीली होना ये चौथे काल का स्वरूप ही नहीं है, ये भरत के चौथे काल का स्वरूप है, वहाँ का चौथा तो यहाँ की जो स्टार्टिंग में जो है वहाँ का हमेशा है, ये तो पहले भी बताए हमेशा है, वहाँ तो वही होगी, वहाँ तो कोई वेरिएशन ही नहीं होगा, वहाँ ना आर्यखंडों में वेरिएशन होता है ना ब्लेंचों में होता है, कालों का जो परिवर्तन जो है वो भर कहाँ पर ब्लेंच में शरीर की अवगाहना की अपेक्षा चौथे काल जैसी परिस्थिति है, बाकी वहाँ धर्म की कुछ प्रवृत्ति नहीं है, अन्य बातों में चौथा काल नहीं लगाना वहाँ, हाँ वो तो हाइट वाइज लेना है। हाँ कम ज्यादा होगी ना वहाँ तो, ऊपर एवरेज 500 की वहाँ बताई जाती, परंतु यहाँ तो अविनाभाव बताया उन्होंने, वहाँ होगी ना वो क्या कहते मालूम है, वहाँ पर भी कोई ड्वार्फ वगैरह होगी कि नहीं होगी ऐसा कह रहे उनका कहना, 6 संस्थान तो होते हैं ना सब जगह, यानी उनके वहाँ की एवरेज वो 500 का है, यानी उसमें कोई अभी जैसे यहाँ काल वाइज कम होता है वैसे वहाँ नहीं होगा। हाँ इतने हाइटेड ही रहेंगे, अभी 500 से तो 2-4 फुट कम हो गए हो तो फिर हाइटेड ही हो गए। यानी ये यहाँ से हम देख रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने आहार की बात बताई, फिर मारणांतिक की कैसे करना कैलकुलेट वो बताई बात। अब यानी उनका जो रहने का ठिकाना वो भी वो तो नेचुरल ही ना, चार लोगों के असंख्यात भाग है, मनुष्य लोग का संख्या तो भाग है, विहार करके भी चले जाएंगे तो भी मनुष्य लोक में ही विहार करेंगे, वो भी बात तो उतनी होती है। वेदना कषाय वैक्रिक आहारक वगैरह भी होगी तो यही घटित होता है। केवल मारणांतिक समुदाय मनुष्य लोक के असंख्यात गुणा क्षेत्र में होता है, वो भी हमने अभी देखा। ये मैं फिर दोबारा बताना चाहती थी आपको। तेजस समुद्रात की भी बात उन्होंने 12x9 योजन में वो पीरियड होते हैं उसकी बात वहां पर भी बताई। अब यहाँ 47 पेज पर नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है वहां फिर पढ़ते हैं। स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान रूप से परिणत अप्रमत्त संयत जीव। अभी तक हमने प्रमत्तों की बात देखी। देखो प्रमत्त और अप्रमत्त में क्या डिफरेंस होगा तेजल आप बताओ, कौन कौन से पद लगाना, 10 पद में से कौन कौन से लगाना, प्रमत्त में कौन से लगाए पहले ये गिनाओ। स्वस्थान स्वस्थान विहार व स्वस्थान वेदना कषाय वैक्रिक आहार तेजस, 7 लगे। मारणांतिक बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया मारणांतिक, तो इतने हो गए। अभी आपको अप्रमत्त में बताओ, क्या नहीं होगा ये पहले बताओ। तेजस और आहार तो नहीं होगा ना, विहार भी नहीं, नहीं विहार में अभी वो आप प्रवृत्ति देखते, तेजस नहीं होगा ना, तेजस छठे में चालू हो जाए। देखो देखो क्योंकि वो तो तेजस का बताया नहीं परंतु बात तो वही होगी ना, अभी देखेंगे इससे सिद्ध होगा। अभी अभी कितने पद लगाते वो देखो ना, विहार तो होता है ना, विहार के काल में छठा सातवां गुणस्थान होता रहता है ना, हम बाहर की क्रिया देखते वो आहार के जाते हैं विहार के जाते हैं उसके छठा सातवां उपयोग अपने को पकड़ लेता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो स्वस्थान स्वस्थान और विहार व स्वस्थान रूप से परिणत अप्रमत्त संयत जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य लोग आदि चार लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, ये तो समझ में आती, और मानुष क्षेत्र के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं क्योंकि उनकी संख्या मल्टीप्लाइड बाय उनकी अवगहना, वो भी संख्यात भाग। मारणांतिक मारणांतिक क्या हुआ है, बीच में कुछ शब्द पड़ा है वो निकालो। मारणांतिक अच्छा 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 कस हो गया सक समुद्रघात पहले आए वो सर इधर का उधर गया। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए अप्रमत्त संयतों का क्षेत्र, मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए प्रमत्त संयतों के क्षेत्र के समान होता है। वहां पर भी उसकी राशि से गुणा करेंगे बात तो उतनी होगी, संख्या प्रतरांगुल से गुणित कुछ कम 7 राशि। अप्रमत्त संयत गुणस्थान में उक्त 3 स्थानों को छोड़कर शेष स्थान नहीं होते, क्या लिखा ना वेदना वाले हैं और ना ही, क्योंकि वो तो गुणस्थान वो बताए ना, विहार इसलिए कह दिया है कि वो विहार के काल में उनके ये होता है, पर उनके जो उस समय ना वेदना कषाय वैक्रिक आहार कुछ नहीं होगा, तेजस की तो बात ही नहीं है। कषाय कैसे कषाय है वो अबुद्धि पूर्वक के है ना, वहाँ पर उस गुणस्थान की बात है। और ऐसे कषाय में स्वस्थान स्वस्थान विहार व स्वस्थान और मारणांतिक तीन ही होते हैं। हाँ हमने गिना ही नहीं था, हमने कहा क्या नहीं होगा तो आहारक और तेजस का तो रूल आउट ही किया था, बाकी हमने कहा भी यहाँ इसमें से देख लेते हैं। और अप्रमत्त में विहार बताने वैसा वो विहार करने का विकल्प से विहार नहीं होगा, परंतु देव भी उठा के ले जाएंगे उसको भी हम ले सकते हैं देव। हाँ नहीं नहीं, पर वो जो गमन करते हैं तो उस गमन के काल में उनके बाह्य प्रवृत्ति हो रही है, तो उस प्रवृत्ति के रहते हुए वो जैसे हम पूजा कहते हैं और पूजा करते हुए हमारा मन कहीं उपयोग कहीं भटक कर आता है तो उनके तो शुद्ध उपयोग होता है उस काल में, तो अप्रमत्त कहलाएगा। यानी मुनि राजाओं के चलते फिरते वो भी उनके छठा सातवां गुणस्थान चलता रहता है, उस अपेक्षा से भी ले सकते या कोई देव उठा के उनको ले गए वो भी कह सकते उनको। यानी अप्रमत्त में स्वस्थान 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 विहार व स्वस्थान और मारणांतिक, ये तीन ही पद होते हैं मारणांतिक समझ आते। प्रमत्त में लिया था वेदना, ये क्या अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, देखो ऊपर के पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, इस प्रकार उक्त क्षेत्र वहां स्वस्थान स्वस्थान लिया, विहार व स्वस्थान लिया, वेदना लिया, कषाय लिया, वैक्रियक लिया, आहारक लिया और मारणांतिक लिया। बाद में तेजस का उन्होंने स्पेशली बताया एरिया उसके अलग कैलकुलेट करने के लिए। हाँ उसमें है ना, तो प्रमत्त में नहीं, ये दो तो ये हो गया और एक दो तीन चार और पांच तो समुद्घात हुए, उपपाद और केवली तो होता नहीं है। हाँ प्रमत्तों में आठ हुए पद, अप्रमत्तों में तीन ही हुए। प्रमत्तों में क्या नहीं लिया, केवली नहीं लिया और उपपाद नहीं लिया। हाँ
जन्म नहीं होता
जन्म के समय छठा सातवां नहीं होता। हाँ आगे बढ़ेंगे। उपशम श्रेणी के चारों गुणस्थान वर्ती उपशामक जीव, अभी वहां विहारवत भी नहीं लेंगे और वो अगर देव उठा के ले जाते तो वो भी अपेक्षाएं घटित नहीं हो रही है। यानी प्रमत्त में तो विहार करके जाने वालों की बात लेनी है। देखो उपशम श्रेणी के चारों गुणस्थान वर्ती उपशामक जीव स्वस्थान स्वस्थान और मारणांतिक समुद्घात, इन दोनों पदों में स्वस्थान स्वस्थान और मारणांतिक समुद्घातगत प्रमत्त संयतों के समान होते हैं। उसमें दो ही पद है, ख्याल में आती है विहार, यानी वो तो स्वयं विहार करके तो जाएंगे नहीं कहाँ, ये सातवें गुणस्थान ऐसा है कि विहार के काल में उनका छठा सातवां होता है इसलिए उसको स्वीकार किया। श्रेणी वाले भले देव उठा कर ले जाएंगे तो उनका अपना विहार नहीं कहलाएगा, ये कहना चाहती हूँ, उसको लिया नहीं उन्होंने। शपक श्रेणी के चार गुणस्थानवर्ती शपक और अयोग केवली जीवों का स्वस्थान स्वस्थान प्रमत्त संयतों के स्वस्थान स्वस्थान के समान होता है। ये आप बताना मनीषा बेन, उपशम वालों को स्वस्थान और मारणांतिक दो लिए और क्षपक वालों को केवल स्वस्थान लिया, क्यों? मरते नहीं तो मारणांतिक नहीं करेंगे, मारणांतिक वही करते जिन्होंने आयु का बंद किया है, आयु का बंद करने वाले क्षपक श्रेणी चढ़ते नहीं है, समझ गए ना? बहुत अच्छा। देखो हमने क्या किया, छठे गुणस्थान में हमने आठ पद देखे थे, सातवें में तीन देखे, उपशम श्रेणी में दो देखे, स्वस्थान और मारणांतिक, छपक श्रेणी में स्वस्थान एक ही लेना, संयोग केवली को छोड़ा है, आयोग केवली को भी यही लेना है, छपक के जो है वही आयोग केवली में लेना है, सेवक केवली की बात अलग बताएंगे, क्योंकि उनके अपना रहने का, फिर दंडाकार, फिर प्रतराकार, फिर कपाट प्रतर, सब अलग अलग कैलकुलेट करें। पुन केवली के दंड वगैरह अलग अलग, उसका एरिया अलग अलग होगी ना। हाँ, वो दस में, दस पदों में स्वस्थान और केवली समुद्रघात दो ही लेना है। उन केवली समुद्रघात के एरिया कैलकुलेट करते समय दंड की एरिया अलग होगी, प्रतर की अलग होगी, एक कपाट की अलग, प्रतर की अलग, और लोक पूरण की अलग, पूरा लोक। तो वैसा उसका कथन भी होगा, लोक का संख्या का भाग है क्या, असंख्या दो भाग है, वो बात बताएंगे। क्षपक और उपशामक जीवों के उक्त स्थानों के अतिरिक्त शेष स्थान नहीं होते, बताएं ना बात। अभी हमने जो लिखा था ना, इसमें पद होते अप्रमत्त में ये तीन होते हैं, उपशम श्रेणी वालों के दो पद, यानी स्वस्थान और मारणांतिक। चार क्षपक और अयोगी स्वस्थान ही होता है। अब यहां पर शंका पूछ रहे हैं, यह मेरा है, इस प्रकार के भाव से रहित क्षपक और उपशामक जीवों के स्वस्थान स्वस्थान नाम का पद कैसे संभव है? स्वस्थान है वो अपना मानते तो ही स्वस्थान थोड़ी कहीं, वो जो जहां रहता है वहां वो स्वस्थान होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिन गुणस्थानों में यह मेरा है इस प्रकार का भाव पाया जाता है वैसा वहां ग्रहण किया, परंतु यहां पर अर्थात क्षपक और उपशामक गुणस्थानों में अवस्थान मात्र का ग्रहण किया गया। अवस्थान यानी जहाँ वो रहते हैं, वो जहाँ ठहरे हुए हैं उसकी बात है, अवस्थान मात्र। तो ये हमने सासादन से लेकर अयोगी तक ऐसा सूत्र था, पर सयोगी की बात उसमें नहीं लेनी थी, इसका सूत्र अलग बताएंगे, इसलिए इस सूत्र में सयोगी की बात करते हैं। तो सजोगी केवली केवड़ी खेतते लोगस्य असंख्य यदि भागे, असंख्य जेसु वा भागेसु सव लोगे वा, या तो लोग का असंख्यात वा भाग, या असंख्यात बहुभाग, या पूरा लोग, तीन अपेक्षा बताएं। स्वस्थान में तो असंख्यात वा भाग तो होता ही है, और फिर असंख्यात बहुभाग यानी वो प्रतर वाला लेना। देखो आपको बताएंगे, हम हिंदी में पढ़ेंगे, सजोग केवली जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में, अथवा लोक के असंख्यात बहुभाग क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र में, अथवा सर्व लोक में रहते हैं, क्योंकि दंड भी करेंगे तो लोक का असंख्यात वही भाग होगा, भले वो हम सात राजू ले रहे हैं या नीचे सात और सात, 14 राजू ऊपर से नीचे तक, परंतु उनकी विष्कम्भ वाइज एरिया उतनी कैलकुलेट करेंगे हम, वो लोग का संख्या तो अभाव होगा। तो उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नीचे बताते हैं। देखो यहाँ पर सयोग केवली का स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान क्षेत्र, देखो श्रेणी वालों को विहारवत नहीं लिया, सयोग केवली को विहारवत लिया, उनके विहार होता है ना, दिव्य ध्वनि कीर्ति विहार होता है, हमारा विहार नाम क्यों पड़ा ना, ना, ना। महावीर भगवान का विहार होता था ना, हो गई ना, वो हमें मुख्यतः महावीर की ले रही है, हमारा अंतिम जो है विहार की एरिया उनको, क्योंकि शिखर जी के उसका आजू बाजू भी होगा ना उनका अंतर। देखो यहाँ पर सयोग केवली का स्वस्थान स्वस्थान और विहार व स्वस्थान, सहयोगी को लिया है विहारवत क्षेत्र प्रमत्त संयतों के स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान क्षेत्र के समान होता है, क्योंकि जो प्रमत्तों की अवगाहना है वही तो जाके केवली हुए हैं, तो एक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो क्षेत्रफल निकालना है, विष्कम्भक की अपेक्षा निकालना है, और विहार करके भी उतनी एरिया में जो उनके है मनुष्य लोक के अंदर संख्यात विभाग में वो घटित होगा पूरा कैलकुलेशन। यहाँ तक बात ख्याल में, भले उनकी संख्या प्रमत्तों की करोड़ों में इनकी लाखों में, बात तो उतनी होगी। दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवली जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? अभी दंड की बात स्पेशली पूछते हैं, क्योंकि सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक का भी असंख्यात भाग का, क्योंकि देखो ये तो जगत श्रेणी दो गुना की, चौदारा जो है ना जगत श्रेणी दो गुना की, और उसको इस एरिया संख्या प्रतरांगुल से गुणा किया, यानी जगत श्रेणी से किसी संख्या से गुणा किया, और तिर्यक लोग भी ये लेते हैं तो जगत प्रतर इंटू लाख का सातवां भाग होता है, तो श्रेणी से प्रतर असंख्यात गुणा हो गया ना, तो तिर्यक लोग का भी असंख्यात भाग, ऊर्ध्व लोग का भी असंख्यात भाग, अधो लोग का भी असंख्या, और पूरे लोग का भी असंख्यात, यानी दंड करते हैं तो भी वो असंख्यात भाग ही होता है। हाँ, उसे मनुष्य लोक से वो हो जाएगा संख्या गुना, क्योंकि पूरी जगत श्रेणी आती ना, एक एक डायमेंशन तो जगत श्रेणी की है उसकी। देखो तो कहते चार लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, और अढ़ाई द्वीप संबंधी लोक से यानी जिसको हम मनुष्य लोक कहते हैं असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। ये समझ में आई कैसी बात की, वो फिर दोबारा समझाएंगे। शंका, दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवलियों का उक्त क्षेत्र कैसे संभव है? देखो उत्कृष्ट अवगाहना से युक्त केवलियों का उच्छेद, उच्छेद यानी उनकी हाइट 108 प्रमाण अंगुल होता है। ये कैसा निकाला आप निकालेंगे? अभी हमने कितने निकाले थे? 500 तो धनुष निकाले, देख रहे 500 धनुष है ना, तो 500 धनुष के प्रमाण धनुष कितने हो गए? 1 होगा ना, 500 गुना का डिफरेंस होता है ना, एक 500 ऑर्डिनरी योजन के एक प्रमाण योजन होता है, वैसा ही होगा ना। यहाँ पर अंगुल में भी 500 का डिफरेंस होता है तो धनुष में भी 500 का डिफरेंस होगा ना, तो 500 धनुष के बदले एक प्रमाण धनुष हो जाएगा, धनुष एक प्रमाण धनुष, तो उसके 108 प्रमाण अंगुल कैसे किया? छानबे होना चाहिए ना, 108 कैसे आ गए? तो उन्होंने 525 का निकाला। ओहो हो 525, एक सौ पांच इंटू 96 कितना आता है? वही निकाला उन्होंने, 108 हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, 500 से भाग, एक पूर्णांक चाहिए। देखो ए 1.25 इंटू 96 120 ही आता है। देखो आगे देखते हम, विशेष 525 के ही लिए ना। इसका कारण विचारणीय बताया उन्होंने। उन्होंने उसका ये महीने अभी बताया ना 525 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 96 ही करना चाहिए। ये बढ़कर है इसका वैषम्य का कारण विचारणीय ऐसा आगे लिखा है, मैंने उनको भी पता नहीं चला 108 क्यों लिए। चलो हम यहाँ देखते, देखो अपना शंका समाधान चल रहा है ना, वहां पर फिर से पढ़ते। मैंने वही बताया 500 धनुष का एक प्रमाण धनुष होता है और एक प्रमाण धनुष के 96 प्रमाण अंगुल हो गए, तो यानी इन्होंने 108 बताए, तो 108 तो इनका कहना है कि 525 ले लो, तो 525 के ऑर्डिनरी धनुष के प्रमाण धनुष कितने हो गए, 525 डिवाइडेड बाय 500 यानी 5.25 हो गए, 5.25 इंटू 96 करो, नहीं 0.525 को 96 से गुना करो तो फिर वो बराबर नहीं आती, तो 108 नहीं आते उसके लिए। यहाँ लिखा ना 100 पूर्णांक 425 अंश आता है, यानी 1.05 आता है ऊपर इंटू 96, 96 इंटू 1.05 तो उनका उन्होंने करके बताया यहाँ पर, वो बात हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं 48 पर। यहाँ जो उन्होंने बताया उसी को, उसी फिगर को लेके हम आगे बढ़ेंगे। उत्कृष्ट अवगाहना से युक्त केवलियों का उच्छेद 108 प्रमाण अंगुल होता है और उसका नौवा भाग अर्थात 12 प्रमाणांगुल विष्कम्ब होता है। इसकी परिधि 37 अंगुल, 37 करना, और एक अंगुल के 113 भागों में से 95 भाग प्रमाण होती है, 37 पूर्णांक 95 बटे 113। ये उन्होंने सूक्ष्म, इसमें सूक्ष्म परिधि निकाली। वैसे हमेशा हमने, आपको याद होगा, 12 प्रमाण अंगुल को हमने तिगुणा करते तो 36 लेते हैं, उसके बदले उन्होंने सूक्ष्म परिधि निकाली। इसे विष्कम्भ 12 अंगुल के चौथे भाग, 12 अंगुल का चौथा भाग 3 अंगुल लिया, 12 का चौथा भाग है ना, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 होते हैं, तो 3 से गुणा करने पर मुखरूप 12 अंगुल लंबे और 12 अंगुल चौड़े गोल क्षेत्र के प्रत्रांगुल होते। क्या कहना चाहते हैं, 12 अंगुल क्या निकाला, विष्कम्भ लिया, तो ऐसा 12 और ऐसा 12 लंबे चौड़े ऐसे नहीं, गोलाकार एरिया ली शरीर की, ऐसे चपटा है या ऐसा कुछ नहीं है, गोलाकार उन्होंने कैलकुलेट की। तो 12 अंगुल के, अब ये 37 पूर्णांक भूल जाओ, 36 तो ले लो ना, तिगुना परिधि तिगुना हुई, तो तिगुने को 1/4 विष्कम्भ से गुणा करो, विष्कम्भ 12 है उसका 1/4 3 होता है, तो 36 को 3 से गुणा करो, गुणा करो तो क्षेत्रफल गोल, गोलाकार क्षेत्र मिला, वो गोलाकार क्षेत्र को हम दंडाकार से, जो दंड की 14 राजू है कुछ कम, उससे गुणा करेंगे। देखो फिर से यहाँ पढ़ते, तो उन्होंने 37 पूर्णांक 95 बटे 113 ये उन्होंने सूक्ष्म परिधि निकाली। इसे विष्कम्भ 12 अंगुल के चौथे भाग जो 3 अंगुल है उससे गुणा करने पर मुखरूप 12 अंगुल लंबे और 12 अंगुल चौड़े गोल क्षेत्र के प्रत्रांगुल होते हैं। इसका अर्थ समझ में आई बात, मुख ने किसको कहा, अभी ये उसका मुख, ये गोल एरिया कैलकुलेट, अभी जो दंडाकार पूरा समूल घात है उससे 14 राजू से गुणा करेंगे। इन्हें कुछ कम 14 राजुओं से गुणित करने पर दंड क्षेत्र का प्रमाण आता है, यह एक केवली के दंड क्षेत्र का प्रमाण हुआ। ये समझ में आई बात, यही करके बता रहे। उदाहरण, व्यास 12 अंगुल, अतएव गाथा नंबर 14 के अनुसार उसकी परिधि का प्रमाण, पहले हमने सूक्ष्म परिधि निकालने की बात सूत्र देखा था, 12 को 16 से गुणा करना, इसको एक ब्रैकेट बना, अगर 12 ब्रैकेट नहीं बनाते तो 16 प्लस 16 से 12 को गुणा करना पड़ेगा, पहले 12 को 16 से गुणा करके उसमें 16 मिलाना है, डिवाइडेड बाय 113, प्लस 36 एक अंश, 3 × 12 किया, क्योंकि वो तिगुना वो पद्मासन से ले लिया होगा मेरे ख्याल से, 12 के बदले 36 अंगुल जो लिया उन्होंने कैलकुलेट किया, वो पद्मासनस्थ केवली की अपेक्षा बताया, तो ये 4276 बटे 113 आ जाते हैं, और इसी 37.95 बटे 113 अंगुल आ जाते हैं। ये क्या हुआ उनकी गोला का, ये तो परिधि आई, ये परिधि का प्रमाण उन्होंने लिखा ना, ये परिधि हुई। अब क्षेत्रफल कैसे निकाले, परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुणा करेंगे, तो परिधि की संख्या यहाँ लिखी गुणा 12/4, ये आया 12,828 बटे 113 प्रतरांगुल आए, यहाँ प्रतरांगुल ऊपर अंगुल बताया, यहाँ प्रतरांगुल है, क्योंकि अंगुल को अंगुल से गुणा किया तो प्रतरांगुल आ गए। अतएव दंड समुद्घात गत केवली का क्षेत्र प्रमाण, ये जो प्रतरांगुल है गोलाकार की एरिया, गुणा देशों न कुछ कम 14 राज्य, ख्याल में आई बात, देश उन कुछ कम, देश है ना थोड़ा, एक देश, अभी इसी को विशेषांक करके समझा रहे हैं। यहाँ पर दंड समुद्घात क्षेत्र का प्रमाण केवली की उत्कृष्ट अवगाहना 108 प्रमाणांगुल देकर बतलाया है, किंतु इससे पूर्व ही केवली की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष प्रमाण कही गई है। अच्छा, मुझे अभी समझ में आया क्यों कहा, ठीक है, चूंकि उच्छेदांगुल से प्रमाणांगुल 500 गुना होता है, ये पहले बताया ना 525 धनुष प्रमाण पूर्व में बताई थी, इसलिए 525 धनुष प्रमाणांगुल के प्रमाणांगुल 525 बटे 500 गुना 96 100.45 होते हैं, समझ में है ना ये बात कैसी की। वर्तमान प्रकरण में विदेह क्षेत्र की संयत राशि प्रधान है, अतएव यदि विदेह संबंधी अवगाहना ली जाए तो वह तो वो तो 500 ही होती है, 500 बटे 500 एक हो जाएगी, और 96 प्रमाणांगुल ही होती है, 108 प्रमाणांगुल के धनुष अगर वो उल्टा करने जाओ कितने धनुष हो जाएंगे, 108 वो प्लस नहीं चाहिए मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, 108 इंटू 500 बटे 96 करना है,
वो प्लस लिखा है उसकी जगह
प्लस के बदले इंटू करना। ब्रह्मा आपने किया हुआ है क्या? हाँ अभी किया, तो 562.1 होते हैं जो उक्त 525 धनुष के प्रमाण से बढ़ जाते हैं, इस वैषम्य का कारण विचारणीय है, उनको 12 अंगुल ही सिद्ध करना था, 12 अंगुल उनकी मैक्सिमम वो विष्कम्ब नक्की करना था, और मनुष्यों में उससे 9 गुना होता है, इसलिए उन्होंने 108 अंगुल बताया और कुछ नहीं है, कोई थिन भी हो गए कोई ज्यादा भी हो गए ना उसकी अपेक्षा से लिया और कुछ नहीं, 525 का या 500 का ही वो जो कोई नवा भाग है परंतु वो ऑड होता है, परंतु यहाँ 12 अंगुल ये तो बताई हुई बात है, इसलिए 12 अंगुल को 9 गुना करके उन्होंने 108 कर दिया, मनुष्यों में 9 गुना होता है इसलिए वहाँ 108 कर दिया, वैसे 12 अंगुल मैक्सिमम उनकी विष्कम्भ होगी किसी की, यही बताना है उनको, यानी एग्जैक्ट 9वें भाग प्रमाण न लेते हुए हम ऐसा उल्टा अगर कैलकुलेट करेंगे, 9वें भाग प्रमाण लेना है तो ये सब 12 अंगुल लिए ना उन्होंने, तो उसको 9 गुणा करी तो 108 अंगुल होते हैं। अब यह हम धनुष के नौवा भाग करेंगे, धनुष का नौवा भाग करेंगे और उसको अंगुल बनाना है, तो कितना होगा? इसका नौवा भाग करके अंगुल बनाएंगे तो ये नौवा भाग करना है, इतना विष्कम्भ हुआ। उसके अंगुल करने के लिए इसको 96 के गुना करना पड़ेगा, नहीं और फिर 500 से भाग भी देना पड़ेगा ना, प्रमाण करना है तो ये चले जाएंगे, 96 का नौवा भाग हो जाएगा, 9 के 9 900 954 ऐसा कुछ आएगा। उसके बदले उन्होंने 12 अंगुल दिए, 500 धनुष के अगर हम अंगुल निकालते हैं प्रमाण अंगुल तो 10.66 होता है, परंतु मैक्सिमम वीर वो 12 अंगुल की पाई जाती होगी, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। ये लिखा ना विचार नहीं है, वही तो 66.7 यानी 2/3। मैंने 500 के लेते तो उतने, 525 के लेते तो और थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा ना। देखो यहाँ 525 लेते हैं, 525 लेते हैं तो ये 20 यानी यहाँ पर गया, और 5 से भाग दिया तो 5.05 ये ऐसा आ जाएगा, यानी इसको और 1.05 से गुना करो, निकालो कितना होगा तो आपको पता चलेगा। यानी उसको उन्होंने राउंड फिगर करके 12 बनाया और कुछ नहीं। हाँ आगे, अभी एक जीव की बात निकाली नहीं है, एक जीव अगर समुद्घात करता है 12 अंगुल के प्रमाण से उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। अब एक साथ समुद्घात करने वाले संख्यात केवलियों के एट ए टाइम कितने जीव कर सकते, तो फैलाने वाले समेटने वाले 20 और 20 होते हैं। हाँ संख्यात केवलियों के दंड क्षेत्र का प्रमाण लाने के लिए इसे संख्यात से गुणित करें, यानी एक केवली का इतना तो संख्या तो उनकी कितना होगा। इस प्रकार जो क्षेत्र उत्पन्न हो उसे त्रैराशिक के क्रम से सामान्य लोक आदि 4 लोकों से भाजित करने पर उन 4 लोकों में से प्रत्येक लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण दंड क्षेत्र आता है। ये दंड का क्षेत्र भी पूरे लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, तथा उक्त दंड क्षेत्र को मानुष लोक से भाजित करने पर असंख्यात मानुष क्षेत्र लग जाते हैं। यानी मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणा है, क्योंकि वो जगत श्रेणी 2 गुना जगत श्रेणी तो 14 राज्यों में होती है और उसको संख्यात प्रत्यंगुल से गुणा करते हैं। इतनी विशेषता है कि पल्यांकन से दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवली का विष्कम्भ, पल्यांकन ने पद्मासन पलाठी वाली में बेसे ने तो एरिया तिगुना हो जाती है। केवली का विष्कम्भ पहले कहे हुए 12 अंगुल प्रमाण विष्कम्भ से तिगुना होता है। ये मैक्सिमम विष्कम्भ कैलकुलेट करने के लिए उसका प्रमाण 36 अंगुल है, इसकी परिधि 113 अंगुल और एक अंगुल के 113 भागों में से 27 भाग प्रमाण है। वह 37.95/113 किए थे, उसको तिगुना कर दो इतना आता है। उदाहरण वहां उन्होंने 12 का लिया था अंगुल का प्रमाण, यहाँ 36 का लेकर कैलकुलेट कर रहे। देखो व्यास है 36 यानी 36 अंगुल, उसका उन्होंने यूनिट नहीं लिखा है, 36 अंगुल होना चाहिए। अतएव गाथा नंबर 14 के अनुसार परिधि का प्रमाण कैसे निकालेंगे, 36 को 16 से गुणा करेंगे, इसको ब्रैकेट में डालो, प्लस 16 करना, पूरे को 113 से डिवाइड करना और उसको 36 को तिगुणा करके वो प्लस कर देना, वो आ जाएगा 113.27/113। ये उनका फॉर्मूला ही है, वहाँ हमने 12 को तिगुना किया था और यहाँ 36 को तिगुना कर रहे। वो तिगुना करने का वो पद्मासन की बात नहीं थी, बस ये तिगुना करने का उनका विधान ही है। ये तो परिधि निकले, वो बताया ना उन्हें पल्यंकासन। नहीं नहीं वो नहीं लिखना, तीन से गुणा ही करना उसका। वो पहले हमने पल्यंकासन वाला तीन से गुणा किया था, वो नहीं लेना वहां पर। ये हो गया। शेष कथन पूर्व के समान है। पूर्व के समान है ने जो क्षेत्रफल निकाला हमने, जो ये परिधि निकली है उसको वहां का व्यास है 36, 36 के चौथे भाग से गुणा करेंगे तो प्रत्रांगुल में एरिया मिलेगी, और उसको कुछ कम 14 राजू से गुणा करेंगे तो पद्मास्थानस्थ के दंड समुद्रात की एरिया मिलेगी। अब कपाट समुद्रात की बात करें, अभी जो दंडाकार फैला है वो तो वो एरिया तो वैसे ही रहेगी, तो दंडाकार जितना फैला है वही अभी ऐसा फैलेगा आड़ा। तो कोई पूर्व की मुख तरफ मुख होगा तो दक्षिणोत्तर फैलेंगे, तो दक्षिणोत्तर तो कुछ कम 7 राज्य फैलेंगे, और जो उत्तर की तरफ मुंह है पूर्व पश्चिम, जो ऊपर छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा है, इस तरह से फैलेंगे तो उनके एरिया में डिफरेंस पड़ेगा। तो कहते कपाट समुद्रात को प्राप्त हुए केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो कहते सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में। देखो तीन ही लोकों को लिया, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में। क्योंकि एक ऐसा 7 राज्य तो है और ऐसा 2 जगत श्रेणी है, जगत प्रतर तो आता ही उसमें कैलकुलेशन में, और फिर उसको जो दंड की जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई करना। मेरे तिर्यक लोक कितना है? जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय लाख का 7वां भाग, और यहाँ जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय जो विष्कम्भ है उसका है, दंड का जो विष्कम्भ 12 अंगुल या 36 अंगुल लिया था उतना लेना है, इसलिए उसका तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग। फिर से बताते हैं तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग क्यों कहा? आपको याद है तिर्यक लोक की एरिया कैसे कैलकुलेट की थी हमने? 1 राजो बाय 7 राजो, 1 राजु इंटू 7 राजु इंटू 100,000, इसको हमने जगत प्रतर के प्रमाण से करना था। तो इसलिए जगत प्रतर के प्रमाण से करने के लिए 7, 1 के बदले 7 लिखा, उसको 7 से भाग दिया, यानी 7 गुना 7 राजु जगत प्रतर होता है। तो ये 7 हमने यहाँ लिखा, एक ही बात है ना, वो सारे मल्टीप्लीकेशन में। तो 7 गुना 7 राजु होता है जगत प्रतर, और लाख का 7वां भाग, यानी अभी तिर्यक लोक की एरिया कितनी है? जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय लाख का 7वां भाग, जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय 100,000 का 7वां भाग, ये तिर्यक लोक हुआ। अभी हमने दंडाकार करता है तो दंड में हमको अभी राउंड नहीं लेना, हमें विड्थ लेना है। दंड में विड्थ कितनी हुई? 12 अंगुल ले लो ना, पहले 12 अंगुल उनका विष्कम्भ है, तो 12 अंगुल प्रमाण दंड ऐसा था ऊपर से नीचे तक, वही 12 अंगुल रहते हुए ऐसा आड़ा फैला। तो आड़ा फैला तो कहाँ? ऊपर से नीचे तक, और ऐसा आड़ा तो आड़ा हम दक्षिणोत्तर आड़ा फैला ऐसा लेते हैं, यानी पूरे दक्षिणोत्तर पूरा 7 राजू है और ऊपर ये ऐसा 14 राजू, यानी 14 राजू और ऐसा 7 राजू फैला। तो 14 राजू और 7 राजू ये क्या है? 2 गुना जगत प्रतर है ना, क्योंकि 14 क्या है? 2 गुना 7 है, 2 × 7 × 7 इंटू दंड जो 12 अंगुल है इंटू 12 अंगुल, यानी ये जगत प्रतर। अभी ये 2 यहां पर भी लेते हैं तो जगत प्रतर इंटू 36 अंगुल हो गए, और ये तो लाख योजन का 36 नहीं 24 बारदोनी चौबीस चौबीस, ये तो अंगुलों में और ये तो लाख योजनों में है, तो उसका संख्यात्मा भाग होगा। समझ में ना, तिर्यक लोक का संख्यात्मा भाग क्यों कहा? और ढाई द्वीप से असंख्यात गुने क्षेत्र में, ये तो नेचुरल है क्योंकि इतनी जगत प्रतर प्रमाण एरिया है उसकी। अभी यहाँ पर कपार समुद्घात को प्राप्त हुए केविली का क्षेत्र लाने का विधान कहते हैं, अभी उसको बताएंगे कैसा कैलकुलेट करना। मैंने अपनी भाषा में बताया आपको, अभी यहाँ बताया, अभी 50 नंबर के पृष्ठ पर आए हम। केवली जिन पूर्वाभिमुख यानी पूर्व के सन्मुख, या पूर्व की तरफ मुंह होता है या उत्तर की तरफ, पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर समुद्घात को करते हुए यदि पल्लंकासन से यानी पद्मासन समुद्घात को करते हैं तो कपाट क्षेत्र का बाहल्य, बाहल्य ने उसकी विड्थ 36 अंगुल होता है, हमने देखा ना बारत्रिक 36, तिगुना बढ़ता है क्योंकि ऐसे पद्मासन में बैठे हैं तो ये पूरी चौड़ाई ऐसे पूरी दंडाकार थी ना, तो ये ऐसा भी उनका तिगुना हो जाता है यानी 36 अंगुल। और यदि कायोत्सर्ग से, कायोत्सर्ग यानी वो खड़गासन, कपाट समुद्घात करते हैं तो 12 अंगुल प्रमाण बाहल्य वाला कपाट समुद्घात होता है। वो तो बाहल्य तो बताया, जो दंड का बाहल्य था वही यहाँ पर बाहल्य है, आड़े फैलते हैं। इनमें से पहले पूर्वाभिमुख केवली के कपाट क्षेत्र के लाने की विधि का कथन करने पर 14 राजू लंबे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक वात वाले को छोड़कर लेना है ना, तो 14 हम कैलकुलेशन के लिए 14 लेते हैं। 7 राजू चौड़े, क्योंकि पूर्व की ओर मुख है, आप करके देखना, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये दक्षिण और उत्तर, तो ऐसे फैलेंगे ना, यहाँ मुंह करेंगे तो प्रदेश ऐसे फैलेंगे, तो दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राजू एरिया है, तो 14 राजू इंटू 7 राजू इंटू जो 36 अंगुल लिया था, ये उनकी कपाट की एरिया होगी। देखो तो पहले पूर्वाभिमुख केवली के कपाट क्षेत्र का लाने का विधि का कथन करने पर 14 राजू लंबे, 7 राजू चौड़े और 36 अंगुल मोटे क्षेत्र को स्थापित करके उसे 14 राजू लंबाई में से बीच में 7 राजू के ऊपर छिन्न करके एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे क्षेत्र को स्थापित कर देने पर 72 अंगुल मोटा जगत प्रतर हो जाता है। जैसे हमने 12 दुनी 24 किया था, यहाँ 36 दुनी 72 लिया, यानी 14 राजू को उन्होंने 2x7 किया, 2x7x7 तो 2 जगत प्रतर हुआ। उसके बदले एक रखो और ये 2 का गुणाकार है वो 36 अंगुल में ले चले, 36 अंगुल को 36 को 2 गुना करो, यहाँ जगत प्रतर को 2 गुना किया था और उसको 36 अंगुल से गुणा किया, उसके बदले गुणाकार ही बदलना है ना, जगत प्रतर एक रखो और ये 2 का गुणाकार था वो 36 को लगा लो तो 72 हो जाता है, तो 72 अंगुल मोटा जगत प्रतर हो जाता है। इस अर्थ समझ में आई ये बात? और कायोत्सर्ग से पूर्वाभिमुख स्थित हुए केवली का कपाट क्षेत्र 24 अंगुल मोटा जगत प्रतर होता है, यानी वही पूर्वाभिमुख है, बारदोनी 24 अंगुल जो हमने कैलकुलेट किया था। अभी उत्तराभिमुख के लिए क्या है, ऊपर और नीचे वो असमान है ना, 1 राजू 5 राजू फिर 1 राजू फिर 7 राजू, उसकी एवरेज कितना हुआ 1+5 कितना हुआ 6+1
7 नीचे 7।
हाँ अभी उत्तराभिमुख, हाँ अभी उसके डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, यानी कितना हुआ 3.5, 7 द्वितीयांश हुआ ना, तो एग्जैक्ट उसका आधा होगा कि नहीं होगा, वहां 7 लिया था 14 राजू इंटू 7 राजू लिया था, यहाँ 14 राजू इंटू 14 चतुर्थांश लेना पड़ेगा, ख्याल में आती है, 14 चतुर्थांश यानी 7 द्वितीयांश, 7 द्वितीयांश मल्टीप्लाइड बाय 14 यानी 7 × 7 एक जगत प्रतर हुआ, वहाँ हमने दो जगत प्रतर लिया था, यहाँ एक जगत प्रतर 36 × 12 यानी एग्जैक्ट उसका आधा हो गया। ख्याल में आई बात? क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा वो निकालेंगे क्या करूँ। हाँ तो देखो उत्तराभिमुख, ये समझ में आती है ना कैसे कैलकुलेट किया। उत्तराभिमुख होकर पल्यंकासन से समुद्घात को प्राप्त हुए केवली का कपाट क्षेत्र, उसको नाम हमने देखे थे जीवकांड में, उपविष्ट और स्थित देखा था, ऐसे दो प्रकार बताए थे, यानी जो खड़े हैं क्या बैठे हैं उसके लिए। तो पल्यंकासन वालों का 36 अंगुल मोटा जगत प्रतर प्रमाण होता है। ये समझ में है ना जगत प्रतर क्यों लिया, वहां 72 किया था क्योंकि दो जगत प्रतर थे। तथा इतर का, इतर यानी अभी कौन जो रिमेनिंग, उत्तराभिमुख होकर कायोत्सर्ग से समुद्घात करने वाले केवली का कपाट क्षेत्र 12 अंगुल मोटा जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि वेदना समुद्घात को छोड़कर जीव के प्रदेश तिगुणे नहीं होते हैं। और यहाँ केवली की बात है, यहाँ तो कोई वेदना का सवाल नहीं है। यह उपर्युक्त कपाट समुद्घातगत केवली का क्षेत्र त्रैराशिक क्रम से सामान्य लोक आदि 3 लोकों के प्रमाण रूप से करने पर, देखो यहाँ क्या है, जगत प्रतर को कुछ संख्या से गुणा किया, अंगुलों से गुणा किया, और पूरा लोक कितना है, जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी होता है। समझ में आई बात? तो 3 लोकों से प्रत्येक लोक के असंख्या से भाग प्रमाण, कपाट करने पर भी अभी असंख्या का भाग ही है, क्योंकि ऐसे केवल इतने 12 अंगुल या 36 अंगुल ही चौड़े हैं, ऐसा भले पूरे लोक तक फैले पर ऐसा तो पूरा जगत श्रेणी प्रमाण फैलना है उसको, तो असंख्यात भाग होता है। और तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि अभी भी हमने देखा है ना जगत प्रतर इंटू 36 या 72 अंगुल लिया, और वो जगत प्रतर इंटू लाख का 7वां भाग होता है, तो वो भी उसका संख्यात भाग होता है, और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुना है। अब बाकी प्रतर की बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देव।